नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। पीटर चेकलैंड की पुस्तक सिस्टम्स थिंकिंग, सिस्टम्स प्रैक्टिस प्रबंधन, संगठनात्मक परिवर्तन और सामाजिक जांच के क्षेत्र की आधारभूत कृति है। इसका केंद्र सॉफ्ट सिस्टम्स मेथोडोलॉजी है, जिसे उन उलझी परिस्थितियों के लिए विकसित किया गया है जहाँ समस्या की परिभाषा, लक्ष्य और सफलता के मानदंड पर लोगों की सहमति नहीं होती। चेकलैंड इंजीनियरिंग और ऑपरेशंस रिसर्च से निकली हार्ड सिस्टम सोच की उपयोगिता स्वीकार करते हैं, लेकिन दिखाते हैं कि मानव संगठनों को केवल मापने, मॉडल बनाने और अनुकूलित करने योग्य वस्तु मानना अपर्याप्त है। पुस्तक का उद्देश्य तैयार समाधान देना नहीं, बल्कि जांच की ऐसी अनुशासित प्रक्रिया सिखाना है जो अलग अलग विश्व दृष्टियों को सामने लाए और व्यवहार्य सुधार तक पहुंचाए। मूल पुस्तक सॉफ्ट सिस्टम्स मेथोडोलॉजी के विकास को व्यावहारिक शोध के माध्यम से समझाती है। बाद में जोड़ा गया 30 वर्ष का पुनरावलोकन इसकी अवधारणात्मक यात्रा, प्रयोगों और परिपक्वता पर लेखक का आत्म मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले हार्ड सिस्टम्स और सॉफ्ट सिस्टम्स के बीच मूलभूत अंतर। पुस्तक का पहला निर्णायक योगदान हार्ड और सॉफ्ट सिस्टम सोच के अंतर को स्पष्ट करना है। हार्ड दृष्टिकोण उन स्थितियों में प्रभावी होता है जहां उद्देश्य अपेक्षाकृत तय हो, समस्या की सीमाएं पहचानी जा सके और उपलब्ध विकल्पों का तकनीकी मूल्यांकन किया जा सके। उदाहरण के लिए उत्पादन क्षमता या संसाधन आवंटन जैसी स्थितियों में अनुकूलन उपयोगी हो सकता है, लेकिन संगठनात्मक जीवन में अक्सर असली कठिनाई गणना नहीं बल्कि यह तय करना होती है कि समस्या है क्या, किसके लिए है और सुधार किसे कहा जाएगा। अलग विभाग, प्रबंधक, कर्मचारी और नागरिक एक ही स्थिति को अलग अर्थ दे सकते हैं। चेकलैंड के अनुसार ऐसी परिस्थिति को पहले से मौजूद वस्तुगत सिस्टम मान लेना गलत प्रारंभ बिंदु है। सॉफ्ट सिस्टम सोच इस विविधता को शोर या बाधा नहीं मानती, बल्कि जांच का विषय बनाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि तथ्य, आंकड़े या तकनीकी विश्लेषण महत्वहीन है। अर्थ यह है कि उनके उपयोग से पहले उद्देश्य, सीमाएं और मूल्यांकन के मानदंडों के पीछे मौजूद मानवीय व्याख्याओं को समझना जरूरी है। इस तरह पुस्तक समाधान लागू करने से पहले समस्या निर्माण की प्रक्रिया की जांच कराती है। यही बदलाव इसे साधारण प्रबंधन तकनीकों से अलग बनाता है। दूसरा, समस्या नहीं समस्याग्रस्त स्थिति से जांच शुरू करने का सिद्धांत। चेकलैंड ऐसी जटिल स्थितियों को समस्याग्रस्त स्थिति कहते हैं, न कि तुरंत हल होने वाली स्पष्ट समस्या। यह शब्द चयन महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी स्थिति को एक निश्चित समस्या घोषित करना अक्सर किसी एक पक्ष की व्याख्या को अनजाने में स्वीकार कर लेना होता है। यदि किसी संस्था में सेवा की गुणवत्ता, लागत और कर्मचारियों की असंतुष्टि एक साथ दिखाई दे, तो केवल लागत को समस्या कहना बाकी अनुभवों को दबा सकता है। सॉफ्ट सिस्टम्स मेथोडोलॉजी जांचकर्ता को पहले स्थिति की समृद्ध समझ बनाने के लिए प्रेरित करती है। इसमें औपचारिक संरचना के साथ अनौपचारिक संबंध, सत्ता, संस्कृति, तनाव, भाषा और हितों को भी देखा जाता है। उद्देश्य लोगों को किसी बाहरी निदान के अनुसार वर्गीकृत करना नहीं, बल्कि यह समझना है कि वे स्थिति को कैसे अनुभव करते हैं। इस चरण में चित्रात्मक और संवादात्मक प्रस्तुतीकरण उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि वे केवल प्रक्रियाओं नहीं बल्कि परस्पर निर्भरताओं और विवादों को भी दिखा सकते हैं। पुस्तक का तर्क है कि जल्दबाजी में समस्या परिभाषित करने से समाधान तकनीकी रूप से सुंदर पर सामाजिक रूप से अस्वीकार्य हो सकता है, इसलिए जांच को खुला रखना कमजोरी नहीं बल्कि जटिल मानवीय परिस्थितियों में बौद्धिक अनुशासन है। इससे बाद के विकल्प वास्तविक अनुभवों और सीमाओं से जुड़े रहते हैं। तीसरा, विश्व दृष्टि के आधार पर उद्देश्यपूर्ण गतिविधि मॉडल बनाना। सॉफ्ट सिस्टम्स मेथोडोलॉजी में सिस्टम वास्तविक दुनिया से सीधे खोजी गई मशीन नहीं है, वह सोचने का एक बौद्धिक उपकरण है। चेकलैंड उद्देश्यपूर्ण मानव गतिविधि के मॉडल बनाते हैं, जिनका आधार किसी विशेष विश्व दृष्टि से निकली स्पष्ट परिभाषा होती है। एक ही संस्था को सेवा प्रदाता, लागत नियंत्रक, ज्ञान समुदाय या सार्वजनिक जवाबदेही वाली व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है। हर दृष्टि अलग उद्देश्य, भूमिका और सफलता के मानदंड उत्पन्न करेगी, इसीलिए मॉडल को अंतिम सत्य या संगठन का शाब्दिक नक्शा नहीं समझना चाहिए। उसका काम यह पूछना है कि यदि इस दृष्टि को गंभीरता से लिया जाए तो कौन सी गतिविधियां तार्किक रूप से आवश्यक होंगी और वे कैसे जुड़ेंगी। इस प्रक्रिया में परिवर्तन, लाभार्थी, परिवर्तन करने वाले लोग, सीमाएं और व्यापक विश्व दृष्टि जैसे प्रश्न उपयोगी होते हैं। ऐसी स्पष्टता अस्पष्ट चर्चाओं को ठोस बनाती है। लोग किसी मॉडल से सहमत न हो, फिर भी वे बता सकते हैं कि उसकी मान्यताएं कहां उनके अनुभव से भिन्न है। यही असहमति उपयोगी जानकारी बन जाती है। पुस्तक इस तरह मॉडलिंग को भविष्यवाणी या नियंत्रण का माध्यम कम और विभिन्न व्याख्याओं के बीच व्यवस्थित संवाद का माध्यम अधिक बनाती है। चौथा, तुलना और अनुकूलन के माध्यम से सुधार की ओर बढ़ना। पुस्तक में मॉडल बनाने का लक्ष्य केवल विश्लेषण तैयार करना नहीं है। अगला महत्वपूर्ण कदम उन आदर्शीकृत गतिविधि मॉडलों की वास्तविक स्थिति से तुलना करना है। तुलना का अर्थ यह नहीं कि वास्तविक संगठन को मॉडल जैसा बना दिया जाए, बल्कि यह देखा जाता है कि कौन सी गतिविधियां मौजूद हैं, कौन सी अनुपस्थित हैं, किन गतिविधियों का उद्देश्य विवादित है और किन संबंधों में बदलाव संभव है। इस संवाद से ऐसे परिवर्तन खोजे जाते हैं जो एक साथ वांछनीय और सांस्कृतिक रूप से व्यवहार्य हो। वांछनीयता पूछती है कि क्या परिवर्तन स्थिति को बेहतर समझे गए रूप में सुधारता है। व्यवहार्यता पूछती है कि क्या लोग, सत्ता संबंध, संसाधन, नियम और संस्थागत संस्कृति उसे स्वीकार या निभा सकते हैं। यह द्वंद्व सॉफ्ट सिस्टम्स मेथोडोलॉजी की व्यावहारिक शक्ति है। यह न तो केवल आदर्श समाधान थोपती है, न ही मौजूदा व्यवस्था को अपरिवर्तनीय मानती है। चिकलैंड सहमति को अनिवार्य लक्ष्य नहीं मानते। अलग विश्व दृष्टियां बनी रह सकती हैं, फिर भी लोग सीमित लेकिन सार्थक कार्रवाई के लिए अनुकूलन तक पहुंच सकते हैं। कार्रवाई के बाद नई परिस्थितियां और नई व्याख्याएं उभरती हैं, इसलिए प्रक्रिया फिर शुरू हो सकती है। इस चक्रियता में सुधार एक बार की परियोजना नहीं, सतत सीखने का अभ्यास बनता है। अंत में 30 वर्ष का पुनरावलोकन और मेथोडोलॉजी को कौशल की तरह समझना। विस्तारित संस्करण का 30 वर्ष का पुनरावलोकन पुस्तक को केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं रहने देता। चिकलैंड सॉफ्ट सिस्टम्स मेथोडोलॉजी को किसी जड़ चरणबद्ध नुस्खे की तरह पढ़ने के जोखिम पर ध्यान दिलाते हैं। इसके विकास का आधार लंबे समय तक किया गया एक्शन रिसर्च था, इसलिए इसके विचार वास्तविक हस्तक्षेपों, कठिनाइयों और संशोधनों से बने। आरंभिक 7 चरणों वाली प्रस्तुति सीखने के लिए उपयोगी हो सकती है, पर परिपक्व उपयोग में जोर जांच की तार्किक प्रवाहशीलता पर है। इसे व्यापक रूप से स्थिति को समझने, उपयुक्त उद्देश्यपूर्ण मॉडल गढ़ने, तुलना करने और सुधारात्मक कार्रवाई लेने के चक्र के रूप में देखा जा सकता है। पुनरावलोकन यह भी रेखांकित करता है कि मेथोडोलॉजी मेथड से अलग है। मेथड तय निर्देशों का संग्रह हो सकता है, जबकि मेथोडोलॉजी उसके दार्शनिक आधार, उपयोग की शर्तों और चिंतनशील अभ्यास को भी शामिल करती है। इसलिए कोई व्यक्ति केवल आरेख या चरण अपनाकर सॉफ्ट सिस्टम्स मेथोडोलॉजी का गंभीर उपयोग नहीं कर लेता। उसे अपनी धारणाओं, अपनी भूमिका और जांच पर अपने प्रभाव को भी देखना होता है। यह आत्मचिंतन पुस्तक की स्थायी प्रासंगिकता का कारण है, क्योंकि जटिल मानवीय संदर्भों में विधि का विवेकपूर्ण प्रयोग ही निर्णायक होता है। निष्कर्ष में, सिस्टम्स थिंकिंग, सिस्टम्स प्रैक्टिस उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो संगठनों, सार्वजनिक सेवाओं, सूचना प्रणालियों, नीति, परामर्श या सामुदायिक परिवर्तन में ऐसी समस्याओं से जूझते हैं जिनकी एक स्वीकृत परिभाषा उपलब्ध नहीं है। प्रबंधन के विद्यार्थी और शोधकर्ता इसके माध्यम से यह समझ सकते हैं कि प्रणालीगत सोच केवल दक्षता बढ़ाने का उपकरण नहीं, बल्कि जांच की एक अलग दार्शनिक पद्धति भी है। अनुभवी प्रबंधकों और परिवर्तनकर्ताओं के लिए इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि यह जल्दबाजी में समाधान थोपने के बजाय हितधारकों की व्याख्याओं, विरोधों और व्यवहार्य सीमाओं को काम का केंद्रीय हिस्सा बनाता है। पुस्तक आसान त्वरित मार्गदर्शिका नहीं है। इसकी भाषा और वैचारिक आधार पाठक से धैर्य मांगते हैं, विशेषकर सिस्टम, विश्व दृष्टि और मेथोडोलॉजी जैसे शब्दों के सटीक अर्थ पर। फिर भी यही गहराई इसकी विशिष्टता है। समान श्रेणी की अनेक प्रबंधन पुस्तकों में समस्या को पहले से परिभाषित मानकर सुधार के उपकरण दिए जाते हैं। चिकलैंड की पुस्तक उससे पहले का अधिक कठिन प्रश्न उठाती है कि समस्या किसकी दृष्टि से और किन मान्यताओं के आधार पर परिभाषित हुई है। 30 वर्ष का पुनरावलोकन इसे और मूल्यवान बनाता है, क्योंकि वह सिद्धांत को अचूक घोषणा की तरह नहीं, बल्कि दीर्घकालीन अभ्यास से विकसित सीख के रूप में रखता है। जटिल मानवीय परिस्थितियों में जिम्मेदार परिवर्तन समझने के लिए यह अभी भी एक महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं पीटर चिकलैंड, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।